जय श्री साई राम। साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। की पूर्णिमा को होली का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रंगों की होली खेलते हैं, उससे पहले होली का दहन होता है, कहते हैं होली का दहन। खेलने वाली होली, दुलंदी, मंगल मिलन, झूले में श्री कृष्ण की झांकी आदि आदि कई कथाएं प्रचलित हैं होली को लेके। सबसे पहले आप देखोगे कि होली का दहन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। एक कथा आती है, हिरण्यकश्यपु एक राजा था, बहुत ही प्रबल राजा था, जिसको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला हुआ था। उसको मारना सा नहीं था, उसने वरदान मांगा था, न घर के भीतर न घर के बाहर, न धरती में न आकाश में, न देवता से न राष्ट्र से न मनुष्य से, न शस्त्र से न अस्त्र से, इनमें से कोई चीज से न मरूं मैं। न दिन में न रात को, ऐसा वरदान मांग लिया कि उसको मारना मुश्किल पड़ गया। हिरण्यकश्यपु ये भी कहा जाता है एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी था, साइंटिस्ट था, बहुत ज्यादा अभिमान था अपने ऊपर, अपनी तुलना भगवान नारायण से विष्णु से करने लग गया। उसके साम्राज्य में लोग अगर परमात्मा का नाम लेते तो उनको दंडित कर देता था। वह कहता था कि उसकी पूजा की जाए, उसका नाम लिया जाए, भगवान नारायण का नहीं, विष्णु का नहीं। और ऊपर से उनका एक अपना पुत्र प्रहलाद नारायण का भक्त निकल गया। उसने अपने आप को परमात्मा में इतना डुबो दिया कि हमेशा नारायण का नाम रटता था, उनका नाम रटता था। हिरण्यकश्यपु को बिल्कुल पसंद नहीं था, बहुत समझाया बेटे को, नहीं माना बेटा। अपने ही पुत्र को मरवाने का प्रयास किया, पहाड़ से नीचे गिरवा दिया, नीचे गिरा तो फूलों की सेज बच गई, पानी में डुबोने का प्रयास किया, कई तरीके अपनाए, लेकिन अपने पुत्र प्रहलाद को नहीं मार पाया। कहते हैं हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। उसके पास कोई ऐसा मटेरियल था या ऐसा कोई वस्त्र था जो फायर रेजिस्टेंट था, जैसे आजकल बोलते हैं ना वाटर रेजिस्टेंट, फायर रेजिस्टेंट। हालांकि कोई चीज ऐसी होती नहीं है मेरे ख्याल से फायर रेजिस्टेंट, कभी ना कभी वह चीज जल जाती है, गल जाती है, लेकिन आप केवल सोचिए अगर कोई ऐसी चीज हो जैसे आज के मकानों में दीवारें बनती हैं, लिखा होता है फायर रेजिस्टेंट, या काफी देर तक अग्नि अंदर प्रवेश नहीं करेगी, अगर मान लो भगवान ना करे हुए आग लग जाए तो दूसरे कमरे तक आग नहीं पहुंचेगी या पानी नहीं पहुंचेगा। तो मान लीजिए होलिका के पास कुछ ऐसा वस्त्र था जिसके भीतर अग्नि, ओ अग्नि का ताप अर्थात हीट, गर्माहट नहीं जा पाती थी। सुझाव दिया गया कि होलिका अगर, होलिका अगर उस वस्त्र को धारण कर ले, अपने आप को लपेट ले और गोद में प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाए, अग्नि कुंड में बैठ जाए, अग्नि की चिता में बैठ जाए, तो देर या सवेर प्रहलाद जल ही जाएगा। प्रयास किया गया, होलिका अग्नि की चिता में अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में उठाकर बैठ गई। कहते हैं ना जाको राखे साईयां मार सके ना कोई। जिसको ईश्वर बचाने वाला हो उसको कोई नहीं मार सकता। या उल्टा हो गया, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। यह अलग बात है, बाद में प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया। एक बार कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने कहा यह खंभ है क्या, खंभे में भी ईश्वर है। प्रहलाद का कहना था कि नारायण हर तत्व में है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसियंस, ओमनीपोटेंट। इन्हें कश्यप पूछा क्या खंभे के अंदर भी है? प्रहलाद बोले है। हालांकि उन्होंने, मैंने सुना है उस खंभे को एक अग्नि के द्वारा लाल कर दिया था, बिल्कुल जला जला के, वो गर्म था। कहा गया कि प्रहलाद को इससे बांध दो। प्रहलाद ने नारायण का ध्यान किया, देखा कि खंभे पे चींटी रेंग रही है। विश्वास हो गया जब चींटी पे चल सकती है तो मैं क्यों बचूंगा। और अपना तो वैसे फिक्र नहीं थी, अपनी फिक्र वैसे ही नहीं थी। कहते हैं प्रहलाद ने खंभे को लपेट लिया, कुछ नहीं हुआ। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने एक प्रहार किया खंभे के ऊपर, वो खंभा टूट गया और खंभे में से नरसिंह अवतार बाहर आए, जो ना मनुष्य थे ना जानवर। नर का धड़ था, सिंह का मुख था। संध्या की वेला थी, ना दिन ना रात। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, खींचकर द्वार पे ले गए, ना भीतर ना बाहर। हिरण्यकश्यप को अपनी जांग पे रखा, ना आसमान में ना धरती पे। ध्यान दीजिएगा, संध्या वेला थी, ना दिन ना रात। घर की चौखट में ना अंदर ना बाहर, जांग पे ना आसमान में ना धरती पर। और मारने वाला कौन था? नरसिंह अवतार, ना मनुष्य ना जानवर ना देवता। उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को चीर डाला। नाखून ना अस्त्रों में आते हैं ना शस्त्रों में आते हैं। हिरण्यकश्यप मारा गया। कहते हैं ऐसी कौन सी चीज है, न धरती में न आकाश में न अंदर न बाहर, न दिन में न रात को, न अस्त्र से न शस्त्र से, न देवता से न मनुष्य से न जानवर से मरती है? कभी सोचा आपने? इसको बोलते हैं अहंकार, ईगो। खैर, ये कहा जाता है जब होलिका का दहन हो गया, होलिका जल गई, उस दिन से होली मनाई जाने लगी। कई कथाएं प्रचलित हैं। ये भी कहा जाता है वो समय था जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कोई दैत्य था तारकास, उसको मारना बड़ा कठिन था। उसको मारने के लिए कोई छोटा बच्चा चाहिए था, और वो बच्चा छोटा होना चाहिए, पता नहीं 7 वर्ष तक होना चाहिए, ऐसे कुछ होना चाहिए। तो कौन मार पाता उसको? तो कामदेव ने प्रयास किया कि भगवान शंकर के अंदर काम वासना को प्रवाहित करे, जिससे उनकी संतान की उत्पत्ति हो, वो संतान तारकासुर को मारे। भगवान शंकर को ध्यान से हटाना आसान नहीं है। कहते हैं भगवान शंकर क्रोध में आ गए, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। वो अलग बात है, बाद में फिर पुनर्जीवित किया। कहते हैं वो भी शायद यही दिन था होली का, या होली का उस दिन से मनाई जाने लगी। आपने देखा होगा जब हम होली मनाते हैं, पहले होली का दहन होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, लकड़ियां जला देते हैं, धागा बांध देते हैं, लकड़ियां जल जाती हैं, धागा रह जाता है। आप प्रयास कीजिएगा। कहने का तात्पर्य उस दिन अगर आप लकड़ी जलाएंगे धागा बांध के, धागा बच जाएगा। ये बताने के लिए कि प्रहलाद कैसे बच गया था, लेकिन प्रहलाद धागे से नहीं बचे थे, प्रहलाद कोई कंबल से नहीं बचे थे, कोई मटेरियल से नहीं बचे थे, कोई वस्त्र से नहीं बचे थे। प्रहलाद को बचाने के पीछे जो चीज थी वो नारायण का नाम था। विचार कीजिएगा, भगवत गीता में दूसरे अध्याय में 62वें और 63वें श्लोक में कहा गया है, ध्यायतो विषयान् पुनः संघातेषु उपजायते, संघात संजायते, कामा कामात् क्रोधा अभिजायते। अगला श्लोक है, क्रोधात् समोहा भवति समोहात् स्मृति विश्रमः स्मृति भ्रष्टाद, बुद्धिनाशमत पंशति। सरल भाषा में बोला जाए, आप जिस चीज पर बार बार ध्यान लगाते हैं, या संसारिक वस्तु पर या सेंशुअल ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाते हैं, बार बार उसका मनन करते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं, बार बार कॉन्टम्पलेट करते हैं, उस चीज से आपका मोह हो जाता है, मोह से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, इससे हमारे बुद्धि में भ्रमित हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है, उससे मानव का पतन हो जाता है। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की या मनुष्य की इन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति प्रिय से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का विनाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से वह अपनी स्थिति से गिर जाता है। सीधी सी बात है, गलत चीज में ध्यान देने से आपकी बुद्धि का विनाश हो रहा है, आप अपनी स्थिति से नीचे गिर जा रहे हैं। अगर ये बात सही है तो हम जीवन में अपना ध्यान कहां लगाते हैं, दुनिया की हर वस्तु पे, परमात्मा को छोड़ के। यहां पर प्रहलाद का ध्यान सदैव हर वक्त हर क्षण हर पल हर स्थिति में हर कंडीशन में हर सिचुएशन में हर लोकेशन में नारायण पे था, और नारायण पे ध्यान लगाने से आपकी बुद्धि की वृद्धि होती है। पहली बात ये, हमें ध्यान कहां लगाना चाहिए, कहां हमें कॉन्टम्पलेट करना चाहिए, कहां हमें मनन करना चाहिए। जब होली का दहन करते हैं हम अन्न डालते हैं, अन्न जलाते हैं, अन्न जल रहा है जी, भुना हुआ अन्न है। आपको लॉजिक समझ आया, अन्न जल रहा है क्या मतलब, वो भुना हुआ अन्न आगे उत्पत्ति नहीं करता। अगर आप गेहूं को थोड़ा भून दें, उसके बाद उसको बो दें, जोतने का प्रयास करें, उगाने का प्रयास करें, नहीं उगेगा वो, क्योंकि भुना जा चुका है। एक बार भून गया, एक बार जल गया, एक बार रोस्ट हो गया, फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। होली का दहन में आपको अपने काम वासनाओं को भस्म करना है, अपनी इच्छाओं को जलाना है, अपनी डिजायर को बर्न करना है। होली का दहन का मतलब केवल इतना ही है कि बर्निंग ऑफ डिजायर। साथ साथ में अपने कर्मों को भी उसमें डालना है, परमात्मा से प्रार्थना करनी है, जो मैंने कर्म किए हैं वह सारे जल जाएं, भस्म हो जाए, ना जाने हमारे संचित कर्मों में क्या क्या पड़ा हुआ है। ये भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण विवाह के उपरांत जब घर लौटे वहां पर गोपियों ने उनका फूलों से स्वागत किया, रंग बिरंगे फूल थे, धीरे धीरे फूलों का रस निकलने लग गया, धीरे धीरे और रंग आ गए। और आज जिस प्रकार से होली मनाई जाती है, केमिकल यूज करते हैं लोग, उस प्रकार का रंग यूज करते हैं, प्रयोग में लेके आते हैं। होली के समय जो रंग का प्रयोग होता था, वो रंग कहां से आते थे? नीम के पत्तों से, कुमकुम से, हल्दी से, बिल्वा के पत्तों से। कहते हैं ऑरेंज रंग जो होता है, संतरी का रंग जो होता है, वो पलस्त पेड़ से आता है। हरा नीम से आ जाता है, और से आता है। पीला हल्दी से आता है। नीला क्या बोलते हैं, बेरीज से आता है या हबेस्की फ्लावर से आता है। बीट रूट जो होता है चुकंदर से, मैजेंटा रंग आ जाता है। ब्राउन कलर आता है चाय के पत्ती से आ जाता है। और ग्रेप से, आंवला से काला रंग आता है। ऐसे कई रंग आते हैं। उन रंगों से मिला के उन रंगों को ऊपर लगाया जाता था। और ध्यान दीजिएगा, ये सारे आयुर्वेदिक तत्व, आयुर्वेदिक जूसेस, रस आपके शरीर में से एक रोग को दूर करते हैं। जैसे आजकल के जमाने में आप देख रहे कोरोना वायरस फैला हुआ है, अब लोग क्या कह रहे हैं, नमस्ते करो, एक दूसरे को छुओ नहीं। जो लोग मर गए उनके शरीर को दफनाया नहीं, जलाया जाए ताकि वायरस फैले ना। हम सदियों से ये चीज करते आ रहे हैं। ये सारे रंग चीजें बनाए जाते थे। कहने का तात्पर्य था, इन रंगों को मलने से आपके शरीर में कोई रोग नहीं आएगा। होली तो कहते हैं प्रेम का त्योहार है। तो होली जो हो गया तो हो गया, लेट्स मूव ऑन। होली अगले दिन भगवान श्री कृष्ण को झूले बैठाया जाता है, झांकी निकाली जाती है। गोपियां भगवान कृष्ण के रंग में रंगी हुई थी। हमें यह देखना है कि हमारी आत्मा की जो चोली है उसका रंग क्या है। हमें यह देखना है कि हम किस रंग में रंगे हुए हैं। आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है, उसको ही कहा गया है मंगल मिलन। मंगल मिलन की परमात्मा के झांकी नहीं है। मंगल मिलन का अर्थ है जब आपकी आत्मा परमात्मा से संलग्न हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, मिल जाए। लेकिन वो कब होगी? जब हमारे आंतरिक शत्रु काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, हालांकि उनको निकालना आसान नहीं है, लेकिन हम अच्छे काम तो कर ही सकते हैं। हम अपना ध्यान अच्छे कामों की ओर बढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं। सोचिए जरा, आप मन में मुटाव होता है कि जो मन मुटाव हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, बोलना बंद कर देते, दूसरे कहता है, लड़ाई शुरू कर देते हैं। इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए होली एक परफेक्ट फेस्टिवल है। जब आप एक दूसरे से गले मिलके पुरानी चीजों को भूल के नई चीज आराम करें, नया जीवन आराम करें। अगर नहीं करेंगे ना, आपके अंदर गलानी आती रहेगी, आप जलते रहेंगे, गलते रहेंगे। यू हैव टू मूव ऑन। जब अपने अंतर में से इन खराब चीजों को साफ नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, तो बाहर का वायरस क्या, अंदर ही वायरस बैठा आपके। तो बाहर की वायरस की चिंता करने का क्या मतलब हुआ? जो अंतर में हमारा वायरस हमें अंदर ही खाई जा रहा है, वो वायरस नहीं है क्या? उसके लिए आपने कौन सा एंटीवायरस यूज कर लिया भाई? एंटीवायरस केवल एक ही है, क्षमा। एंटीवायरस है प्रेम, एंटीवायरस है करुणा। होली में कई रंग होते हैं। एक रंग होता है बैंगनी वायलेट कलर, जो नॉलेज के लिए, स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए है। इंडिगो नील का कलर होता है, जो इंट्यूशन पावर के लिए, परसेप्शन के लिए, हायर माइंड के लिए है। नीला रंग जो है ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है। हरा रंग जो होता है बैलेंस के लिए, हार्मनी के लिए, ग्रोथ के लिए होता है। पीला रंग प्रकृति का है, मन का है, बुद्धि का है। ऑरेंज कलर संतरी रंग जो होता है एडवेंचर, सोशल कम्युनिकेशन, ऑप्टिमिज्म के लिए है। लाल रंग जो है पैशन के लिए, एक्शन के लिए, एनर्जी के लिए है। पिंक कलर जो है कंपैशन के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए, नर्चरिंग के लिए है। अंत में सफेद रंग जो होता है वो प्योरिटी के लिए होता है, वो इनोसेंस के लिए होता है, कंप्लीशन के लिए होता है। और आपने सुना होगा हम लोग एक वेदों के मंत्र को उच्चारित करते हैं हमेशा, कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णम उदास्यते पूर्णश्चः पूर्णम आद्या पूर्णम एव अवशिष्यते। कहते हैं ओम दैट इज फुल, वो पूर्ण है। दिस आल्सो फुल, ये भी पूर्ण है। फ्रॉम फुलनेस कम दैट फुलनेस, पूर्ण से पूर्णता निकलती है। टेकिंग फुलनेस फ्रॉम फुलनेस, पूर्णता से पूर्ण निकाल के फुलनेस नीड इंडीड रिमेन, तब भी पूर्ण रह जाता है। वो ये है कि आत्मा से परमात्मा से जो आत्मा है वो पूर्ण है, उससे और आत्मा वो भी पूर्ण है, और सारी आत्माएं हो सब पूर्ण है, परमात्मा का स्वरूप है। ये बताने के लिए कि हम कि परमात्मा जो है वो कहते हैं कंप्लीट है, ही कंप्लीटली परफेक्ट। हम उससे निकले तो हम भी परफेक्ट हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो वासना लगी चिपटी हुई है वो हमको दूर कर रही है। वासना की मिट्टी को हटाइए, ओम पूर्णता तक पहुंच जाइए। होली मंगलमय, शुभ हो।